नमस्कार, आज हम एक खास पुस्तक पर बात करेंगे। वंदनिया माता भगवती देवी शर्मा जी की प्रौढ़ महिला शिक्षा योजना।
जी,
इसमें जो प्रौढ़ स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा की जरूरत क्यों है और उसे कैसे किया जा सकता है, इसकी एक पूरी आप कह सकते हैं योजना दी गई है।
बिल्कुल।
तो आज हम इसी योजना के जो मुख्य बिंदु हैं और इसके पीछे की जो सोच है उसे समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और ये बहुत जरूरी विषय है। वंदनीय माता जी का ये मानना था कि समाज में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं या लाने हैं, उनके लिए नारी को तैयार होना ही होगा। और इसका पहला कदम है शिक्षा। उन्होंने तो अशिक्षित व्यक्ति की तुलना एक तरह से या तो अंधे व्यक्ति से की या फिर कूप मंडूक से,
कुएं का मेढक जिसका संसार बहुत छोटा होता है।
हाँ बिल्कुल, जिसका दायरा बहुत सीमित है।
और एक दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर पढ़ लेना या कोई नौकरी पा लेना नहीं है।
ये कहा वंदनीय माता जी के लिए शिक्षा का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा था। व्यक्तित्व को निखारना, हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना,
अपनी क्षमताएं पहचानना, दुनिया को समझना।
जी, अपने क्षमताओं को और अपने आसपास की दुनिया को सही ढंग से जानना। उन्होंने तो अशिक्षा को सबसे बड़ा अभिशाप कहा है।
अभिशाप, क्योंकि वो व्यक्ति के विकास के सारे रास्ते रोक देता है।
बिल्कुल, एक तरह से हाँ रास्ते बंद कर देता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये योजना सिर्फ स्कूल जाने वाली लड़कियों की बात नहीं कर रही है, फोकस कहीं और है।
नहीं नहीं, यहाँ खास जोर आज की प्रौढ़ नारी को शिक्षित करने पर है। मतलब वो स्त्रियाँ जो आज समाज का हिस्सा है, घर चला रही है।
अच्छा, ऐसा क्यों? बच्चों की शिक्षा भी तो जरूरी है।
बेशक जरूरी है, लेकिन वंदनीय माता जी का तर्क था कि समाज पर जो फौरन असर डाल सकती है वो तो वर्तमान पीढ़ी ही है। बच्चों की शिक्षा का असर तो धीरे धीरे आगे चलकर दिखेगा। और उनका ये भी मानना था कि एक स्त्री को पढ़ाना एक पुरुष को पढ़ाने से भी ज्यादा प्रभावशाली है।
ये बात तो कई बार सुनिए, उनका क्या तर्क था इसके पीछे?
उनके अपने शब्दों में कहें तो भावी पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर का बहुत कुछ निर्माण माता के द्वारा ही होता है।
यानी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी ये बहुत हद तक माँ पर निर्भर करता है।
जी, गर्भ से लेकर बचपन तक माँ का प्रभाव सबसे गहरा होता है। तो अगर हमें अगली पीढ़ी को बेहतर बनाना है तो माँ का शिक्षित होना, सक्षम होना वो पहली शर्त है।
ठीक है, जरूरत समझ में आती है, मैं तो भी समझ आता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी योजना को लागू कैसे किया जाए? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है?
नहीं, यही तो खास बात है। वंदनीय माता जी इस मामले में बिल्कुल साफ थी, ये सिर्फ सरकारी साधनों से मुमकिन नहीं है।
तो फिर
इसके लिए उन्होंने कहा जन स्तर पर ही प्रबल प्रयत्न करने पड़ेंगे। मतलब समाज को खुद आगे आना होगा
जन स्तर पर। जैसे
उन्होंने तर्क दिया कि लोग अक्सर, आप देखिए, शादी ब्याह, रीति रिवाज या नशेबाजी जैसी चीजों पर सरकार के लगाए टैक्स से कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं।
हाँ, ये बात तो सही है।
तो वो जो जन शक्ति है, लोगों का समय, उनकी मेहनत, उनका पैसा, उनकी बुद्धि, उसे जगाकर शिक्षा जैसे अच्छे रचनात्मक कामों में लगाना होगा।
यानी सरकार का मुंह ताकने की आदत छोड़नी होगी, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
बिल्कुल, अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानना होगा। उनका मानना था कि जब लोग मिलकर किसी नेक काम के लिए जुट जाते हैं तो फिर संसाधन आ ही जाते हैं, काम हो ही जाता है।
और इस योजना में कई व्यवहारिक सुझाव भी हैं जो दिखाते हैं कि ये जमीन से जुड़ी हुई सोच थी, जैसे पाठशाला का समय।
हाँ, दोपहर 2 से 5 बजे का समय सुझाया गया क्योंकि उस वक्त अक्सर महिलाओं को घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिल जाती है।
और जगह के लिए भी कोई बड़ी इमारत की जरूरत नहीं, किसी का खाली कमरा, आंगन या कोई सार्वजनिक स्थान।
हाँ, मंदिर, धर्मशाला, कुछ भी, ताकि शुरुआत में खर्च कम से कम हो।
अच्छा, और जो पढ़ाएंगी, मतलब अध्यापिकाएं, उनके लिए?
उनके लिए भी वेतन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं था, बल्कि सेवा भाव जगाने की बात थी, समयदान लेने की बात थी कि समाज के लिए कुछ करने की भावना से लोग जुड़ें।
सेवा भाव और समयदान, ये आज के समय में शायद थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन भावना अच्छी है। पाठ्यक्रम कैसा था?
पाठ्यक्रम भी 2 स्तरों पर सोचा गया था। पहला तो उनके लिए जो बिल्कुल निरक्षर हैं, उन्हें साक्षर बनाना।
किस स्तर तक?
लगभग 5वीं कक्षा के स्तर तक। और ये अनुमान था कि ये 1 साल में पूरा किया जा सकता है।
और दूसरा स्तर?
वो थोड़ा विशेष वर्ग था, मतलब जो पढ़ना लिखना जानती हैं, उनके लिए लगभग आठवीं कक्षा के स्तर का।
इसमें क्या क्या था? सिर्फ साहित्य, व्याकरण?
नहीं नहीं, वो तो था ही, हिंदी साहित्य, व्याकरण, लेकिन साथ में जीवन के लिए उपयोगी विषय भी थे, जैसे स्वास्थ्य और सफाई के नियम, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, गृह व्यवस्था यानी घर कैसे चलाएं।
अच्छा।
और तो और सामान्य कानून की जानकारी, बैंक और पोस्ट ऑफिस के नियम, ये सब ताकि महिलाएं अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकें, किसी पर निर्भर न रहें।
ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और इसमें कुछ हाथ के काम, हुनर सिखाने की भी बात थी शायद।
हाँ बिल्कुल, गृह उद्योगों को जोड़ने का सुझाव था, जैसे सिलाई कढ़ाई, कपड़ों की मरम्मत करना, घर में ही छोटी सी सब्जी की बगिया लगाना, मतलब शाक वाटिका, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना,
ताकि शिक्षा थोड़ी आकर्षक भी लगे और शायद कुछ आमदनी का जरिया भी बन सके।
हाँ यही सोच थी, और साथ में कला जैसे संगीत को भी जोड़ने का सुझाव था, क्योंकि अक्सर स्त्रियों की इसमें स्वाभाविक रुचि होती है।
तो सीखने का पूरा माहौल दिलचस्प बनाने की कोशिश थी।
जी।
अच्छा एक सवाल और, मान लीजिए कोई स्त्री पाठशाला जा ही नहीं सकती, कई मजबूरियां हो सकती हैं, उनके लिए क्या सोचा गया?
उनके लिए भी दो रास्ते सुझाए गए, एक तो था पत्राचार शिक्षा, मतलब डाक के जरिए पढ़ाई,
और दूसरा?
दूसरा था चल पुस्तकालय का विचार, मोबाइल लाइब्रेरीज।
मोबाइल लाइब्रेरीज ये कैसे काम करते हैं?
कल्पना ये थी कि खासकर जो परिवार निर्माण जैसे विषय हैं या जीवन को बेहतर बनाने वाला साहित्य है, उसे घर घर तक पहुंचाया जाए, इसके लिए स्वयं सेवक झोला पुस्तकालय चला सकते हैं।
झोला पुस्तकालय? हाँ। मतलब झोले में किताबें भरकर घर घर जाना?
हाँ बिल्कुल, किताबें देना फिर वापस लेना, ताकि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, ज्ञान उन तक पहुंच सके। ये भी देखिए, समुदाय की भागीदारी का एक और तरीका है।
सही बात है। तो अगर हम सार देखें तो ये योजना प्रौढ़ नारी शिक्षा को सिर्फ एक अकेडमिक काम नहीं मानती।
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये इसे समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए एक जरूरी, एक तत्काल करने वाला काम, और सबसे बढ़कर एक समुदाय संचालित मिशन के रूप में देखती है।
आपने एकदम सही समझा, ये सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है, ये नारी के समग्र विकास, उसके सशक्तिकरण का आह्वान है, जिसमें व्यावहारिक ज्ञान हो, जीवन जीने का सलीका हो और सामाजिक चेतना भी शामिल हो।
वंदनीय माता जी ने जिस तरह जनशक्ति और स्वेच्छा से सहयोग पर जोर दिया, उसे देखते हुए मन में एक सवाल आता है, आज के समय में जो औपचारिक स्कूल कॉलेज हैं, उनके अलावा या उनके साथ साथ हम अपने समुदाय के स्तर पर क्या कर सकते हैं, महिलाओं में सीखने की ललक जगाने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, ऐसे कौन से छोटे सहज रचनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।